करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। तात्पर्य, शरीर के भीतर प्राणवायु के आवागमन के 6 चक्र है। पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय प्रदेश में, तीसरा फेफड़ों के पास, चौथा तालु में, पांचवा भौहों के बीच में तथा सर्वोच्च छठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर है। मनुष्य को अपने मन तथा प्राणवायु के आवागमन को स्थिर करके भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना होता है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने निराकार शून्य में केंद्रित करे। स्पष्ट उल्लेख है वैकुंठ लीला। जब तक परम सत्य श्री भगवान की दिव्य न हो तब तक उनके विषय में चिंतन के लिए गुंजाइश कहां। भगवान की भक्ति, कीर्तन तथा लीलाओं के श्रवण के द्वारा ही यह ध्यान एकाग्रता प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि भगवान विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंध से प्रकट अंतर्धान होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में भगवान की लीलाओं की अनेक कथाएं पाई जाती है, जिनमें कुरुक्षेत्र का युद्ध, भक्तों यथा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अम्बरीश महाराज के जीवन तथा उपदेश संबंधी ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित है। मनुष्य को इनमें से किसी कथा में अपने मन को केंद्रित करने और इसके विचार में तल्लीन रहने की आवश्यकता होती है, तब वह समाधि में पहुंच जाता है। समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं है, यह वह अवस्था है जो मन तथा द्वारा श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्याति धन्यपवनेन कृतार्तमानि। योगिन्द्र दुर्गम प्रति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो दिशेऽपि। मदैकबन्धु मत्संगी मद्गुरो मद्महान्दन मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचो तथारक हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुर। तो वॉल्यूम थोड़ा कमी आहे बोलते की एकदम माईकच्या जवळ जावं लागत। कमी केलं का आवाज? नाही, प्रत्येक जण हात न घालो, ज्यांना माहिती आहे त्यांनाच विचारतो मी। मास्टर थोडं कमी झालं बोलतो, मतलब एकदम माईक के अंदर मुंह को घुसाना पड रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ठीक। चल सुदिष्णानाम एकदेशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला विध्यानम समाधानम तथात्मनम। एक बार पुनः समस्त उपस्थित भक्तों के चरण में वंदना करते हुए उनके कृपा याचना से हम कुछ भागवत के इन वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। यथाश्रुतम यथामति, जिस प्रकार से श्रवण किया गया, जिस प्रकार धारण किया गया और अंततः जिस प्रकार भगवान प्रकाशित करे, कुछ समय पूर्व की है इस वक्त से चर्चा कर रहा था। इसे जो नियमित शायद पदयात्रा में हमारा अनुभव था, भगवान की विभिन्न सेवाएं हम जब करते हैं और किसी भी सेवा को नियमित रूप से जब किया जाए, श्रद्धा पूर्वक जब किया जाए, तो उससे हृदय पवित्र होता है। और हृदय जब पवित्र हो तो अनुभव यह होता है कि भगवान की हम जो भी सेवा करते हैं, आध्यात्मिक सेवा जो की जाती है, भक्ति में से जो सेवा जो की जाती है, वास्तविक हम अपने सामर्थ्य से कोई सेवा नहीं कर पाते हैं। और अनुभव यह होता है कि वास्तविक भगवान हमारे द्वारा उस सेवा करवा लेते हैं, क्योंकि बद्ध जीव में वह सामर्थ्य नहीं है कि वास्तविक भगवान की सेवा कर सके। या स्पष्ट रूप से कहा जाए, भगवान की सेवा का अधिकार वास्तविक भगवान की आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति करे भक्तेर पोषण, आह्लादिनी शक्ति करे कृष्ण आस्वादन, ऐसा कुछ दो शब्द। आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, जिनके दो मुद्राएं हैं दोनों हाथों में आप देखेंगे, एक कृष्ण का आह्लाद प्रदान करती है विभिन्न प्रकार की सेवा अर्पित करके, और जो जीव है उसे श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार, श्री कृष्ण की सेवा उनसे करवाती है। तो एक वक्त अपना अनुभव बतला कि वास्तविक जब परंपरा गुरु की कृपा से श्रीमती राधा रानी की जब जो स्वरूप भूत शक्ति है वह जब जीव में प्रवेश करे तब सेवा होती है। दो है तो एक सेवा करना और दूसरा सेवा होना। प्रारंभिक अवस्था में जो साधक है हृदय पवित्र नहीं तो विचार करता मैं करता हूं, सेवा मैं करता हूं, जप मैं करता हूं, भगवान की अर्चना मैं करता हूं। परंतु नियमित आप करते रहेंगे तो हृदय पवित्र होगा, फिर अनुभव ही होता है। जैसे कई बार हम जब पदयात्रा में थे तो वहां कुछ भक्तों से मैं अनुभव सुन रहा था, तो वहां भक्तों ने कहा भी, ग्रंथों का वितरण जो भक्त करते हैं वो कहे कि प्रभु पता नहीं कैसे हो जाता है, आपके लिए निताई गौर सुंदर के सामने रहे उनकी कृपा ऐसी रहती है, श्रील प्रभुपाद का नाम लो तो ग्रंथ वितरण हो जाते हैं। कई भक्त नियमित भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के भोग बनाते हैं। जैसे पदयात्रा में कोई भक्त है प्रहलाद वत्सल प्रभु कोल्हापुर के, और ब्रह्मचारी बनने के पहले कैटरिंग बिजनेस था, काफी एक्सपर्ट थे बनाने में, मतलब कुछ ही क्षणों में वो काफी व्यंजन विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं। परंतु उन अनुभव ये रहा कि निताई गौर सुंदर की जब सेवा करने लगे तो कुछ अलग ही स्वाद आने लगा। भोजन तो बाहर भी बनाते हैं परंतु वहां पर फिर कई बार अनुभव हम जब वहां गए तो कुछ भक्तों ने कह दिया निताई गौर सुंदर का प्रसाद अलग ही लग रहा है कुछ, और जो बनाता है उसको भी समझ में नहीं आता कैसे अलग बन गया। वैसे वो नमक मिर्च मसाला उसे ऐसे उठा लिया, ऐसे वो डाल दिया छौंक में, जो बाहर के संसार में किया जाता है, परंतु स्वाद में अंतर आ जाता है। तो इस ग्रंथ वितरण हो चाहे भगवान के लिए भोग सेवा, उसी प्रकार से भगवान श्रृंगार करते। कई भक्तों अनुभव कि वो विचार करके भी नहीं रहते किस तरह का पगड़ी आज पहनाएंगे, परंतु हो जाता है श्रृंगार, भगवान करवा देते हमसे अनुवाद। तो जैसे तीन सेवा को एक दिया, तो वैसे लगभग समस्त सेवाएं, यहां तक कि आप नाम जब भी जब करते हैं, नाम जब जब पवित्र होने लगे, जब शुद्ध होने लगे, नाम जब शुद्ध होने पर एक अनुभव आता है जिसमें यह अनुभव रहता है कि वास्तविक नाम जब हम करवेत करते नहीं है, जैसे कल महाराज श्री प्रातःकाल भी कह रहे थे इसी बात को कि भगवान का आशीर्वाद होता है, विश्व से गुरु परंपरा का जब आचार्य का आशीर्वाद हो तो आचार्य वैष्णव गुरु की कृपा से सहज नाम जीवा पर उदित होता है, क्योंकि भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो भगवान का अवतरण भगवत सेवा का अवतरण दोनों ही एक समान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते संभवामी आत्मा मायाया, भगवान स्वेच्छा से इस संसार में अवतरित होते, भगवान को बाध्य नहीं किया जाता है। भगवान जब भक्तों की प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान स्वयं होकर अवतरित होते हैं। वैसे भगवत सेवा भी जब समस्त भक्तों का कृपा आशीर्वाद होता है तो हमारे जीवन में उस सेवा उदित होती है, विभिन्न प्रकार की भगवान के द्वारा करवाई जाती है। तो वैसे यह भगवान की कथा है भी एक सेवा ही है। तो जो भक्त नियमित इस सेवा को भी करते, अनुभव यही है कि बाहर के संसार, हमारे एक भक्त अपना अनुभव बतला रहे थे, जो कथा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लाइट से जा रहे थे, एरोप्लेन से जा रहे थे जब कथा करने, तो बैठ गए फ्लाइट में, फिर एकदम रिलैक्स आराम से बैठे थे। उनके बगल में एक व्यवसायी व्यक्ति बैठा हुआ था और व्यवसायी व्यक्ति बहुत चिंतित था, बहुत विचार कर रहा था, काफी कुछ फाइल के पन्ने पलट रहा था। तो कुछ समय उपरांत उसने पूछा कि आप इतने एकदम शांत दिख रहे, आराम कर रहे, एकदम रिलैक्स है, तो आप कहाँ जा रहे थे? उन्होंने कहा कि जा रहा हूँ कहीं पर, बहुत बड़ा कार्यक्रम है जहां पर मुझे कथा करनी है। अच्छा, कथा का मतलब कैसा कार्यक्रम रहता है? तो उन्होंने बोला कि वो भागवत कथा है, लगभग 3-4 हजार भक्त वहां पर आने वाले हैं, 3-4 हजार लोग रहेंगे, 3-4 हजार लोगों के समक्ष भगवान की कथा कहनी है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर पूछा, तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी की कोई मीटिंग है जिसके लिए मुझे जाना है, तो मुझे प्रेजेंटेशन देना है, प्रस्तुतिकरण देना है। तो वो प्रस्तुतिकरण किन के लिए? तो बोले वो है जो बोर्ड मेंबर्स पूछ रहे थे, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड वगैरह रहता है उनके लिए है, लगभग 15-20 लोग हैं। तो जो बाहर का व्यक्ति है, वो जो व्यवसायी था, वो आश्चर्यचकित हो गया, कह रहे मुझे केवल 15-20 लोगों के सामने बोलना है तो मेरे पसीने छूट रहे हैं, यहाँ पर मैं तैयारी कर रहा हूँ, यह व्यक्ति है जिसको 3-4 हजार लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। तो बिल्कुल विचार नहीं, तो वो बोले कि हाँ भगवान बुलवा देते हैं। उसने भी इस तरह से कहा कि भगवान की कृपा होती तो बुलवा देते हैं, मुकम करोति वाचालम। तो अनुभव यही है। तो मैं कुछ दिन पहले कहा, तो उस दिन मैं इस बात को भी अपना अनुभव बताया था, वास्तविक जो व्यासपीठ होता है इसकी भी बहुत व्याख्या की गई है, क्या अलग अलग धर्म के जो 4 स्तंभ है, वो 4 स्तंभ पर जो खड़ा होता है वो व्यासपीठ होता है। जो 4 पैर होते, ये नॉर्मली ऐसे कोई लकड़ी का आसन बना दिया हो, परंपरा के द्वारा जब अधिकृत जो आसन होता है, धर्म के 4 स्तंभ 4 पैर होते हैं, और उस पर जब विशेष रूप से हम ग्रंथिर आरंभ करें मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान ऐति निरस्मरण होय विघ्न विनाशन अनायास पूर्ण होय निज वांछित पूर्ण, कि विशेष प्रार्थना वंदना की जाती है, आचार्य की कृपा का जब आवाहन किया जाता है तो वह समस्त आचार्य कृपा की, आचार्य परंपरा की जो कृपा है वह उस एक साधारण साधक में प्रवाहित होती है। तो लगभग ये जो कथा तो प्रसिद्ध है, क्या कहते हो, सिंहासन 32 ही है, कुछ ऐसा था ना, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य सिंहासन, और अनुभव की जैसे उस सिंहासन 32 पर बैठते थे तो अलग ही कुछ शक्ति। उनसे वह बुलवा लेती थी। तो ऐसा ही लगभग अनुभव इन सेवाओं का रहता है। ठीक है, वो कुछ कह देना चाहिए इस श्लोक पर, नहीं तो हमारे दयाल गौरंगपुर निराश हो जाएंगे। सुदिष्णा नाम एक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला भी ध्यानम समाधानम तथात्मन। भगवान कपिल देव का यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश, जिसमें 7 श्लोकों में अष्टांग योग के विभिन्न अंगों का वर्णन, 2-3-4 में यम नियम का वर्णन किया गया है, फिर 5-6 आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, शेष जो अंग है इनका वर्णन इन 2 श्लोकों में मौनम से, जब मौनम सद आसन जय स्थैर्य प्राण जय शनि प्रत्याहारश्च इंद्रियाणां विषयान मनसा हृदि और स्वधिष्ठा नाम एकदेश। ये 2 श्लोक, 2 श्लोक में आसन से प्रारंभ हुआ, तो वो उसके पूर्व के श्लोक का हमने चर्चा की थी, विविक्त देश जो भगवान श्री कृष्ण भी कहे, कल मैं श्लोक स्मरण कर रहा था, वो ध्यान में नहीं आया था ना, अमानितम अदम्बितम अहिंसा शांति आचार उपासम शौचम स्थैर्य आत्मनिग्रह विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। भगवद्गीता अध्याय 13 में जो ज्ञान के 20 लक्षण बतलाए गए, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा, भगवान श्री कृष्ण के इसे ज्ञान कहा गया और इसके अतिरिक्त जितना है अज्ञान है, तो उसमें वहां पर भी शब्द था विक्त देश सेवितुम। अन्य शब्दों में जब मन को ये 2 आप उपलब्धि प्राप्त करवा जाते, मन प्रसन्न याति सत्पथम, जो प्रथम श्लोक में दिया गया है कि आप जो आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास ही अपने आप में एक कृपा है। जैसे हमने कल भी कहा, अभी भी हम कह रहे थे, भगवान गुरु साधु की जब कृपा होती है तो सहज हम भक्तिमय सेवा में संलग्न होते हैं। भक्तिमय सेवा का तुरंत परिणाम 2 होता है, प्रथम कि वह सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान श्री कृष्ण भी कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिवदम, और यहां पर कहा गया मन प्रसन्नम, कि मन को प्रसन्नता वह प्रदान करता है। परंतु सर्वसाधारण अनुभव यह रहा कि कृपा है तो कृपा से हमको सेवा मिल गई, कृपा है तो भक्ति में अंगों का हम पालन कर रहे हैं, परंतु जो परिणाम मिलना चाहिए अनुभव नहीं होता है, प्रसन्नता नहीं अनुभव होती है। और याति सत्पथम, सहज मन भगवान में लगना चाहिए। गीता के प्रारंभ से अंत तक देखा जाए, भागवत के प्रारंभ से अंत तक, भगवान श्रील प्रभुपाद समय समय पर इस बात को पुनः उल्लेख किए कि परसों भी हम श्रील प्रभुपाद जी का जो कथन सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद मन मना भो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार, उस पर कहे ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, श्री कृष्ण में मन को निविष्ट करना, पूर्णतः से मन लग जाए श्री कृष्ण में, यह भक्ति में अति आवश्यक है। कृपा हुई हम पर, परंतु यदि 2 ये परिणाम न हो तो कृपा होकर भी कृपा का अनुभव नहीं होगा। मन प्रसन्नता न हो और श्री कृष्ण में मन अगर निविष्ट न हो, कृपा होकर भी अनुभव नहीं होगा। जिस प्रकार से यह दृष्टांत इसके पूर्व हम दिए हैं कि एक साधारण सा बालक जो रास्ते पर भटक कर लोगों से भीख मांग रहा है, परंतु अज्ञानवश वह नहीं जानता कि वह बहुत बड़े धनी व्यक्ति का पुत्र है, और उसके जेब में ही उसके पिता ने एक ब्लैंक चेक रख दिया है, ब्लैंक चेक नहीं आप कह सकते, 1 करोड़ का चेक है उसके नाम का, उसके जेब में रखा हुआ है, और रास्ते पे भटक रहा है और वो कह रहा है कि भगवान के नाम पर कुछ पैसा दे दो, भगवान के नाम पर कुछ पैसा दे दो। तो एक शिक्षित व्यक्ति आता है, वो देखता है कि वो बालक दिखने में तो कोई भिखारी दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ते और पैसा क्यों मांग रहा है, लोगों से भोजन मांग रहा है। तो बोले क्यों, तो बोले कुछ है नहीं, पैसा नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं है। तो फिर तुरंत शिक्षित व्यक्ति ने उसकी जेब में हाथ डाला और निकाला, तो देखा तो क्या था, एक कागज का टुकड़ा था। तो वो अनपढ़ गवार था बालक छोटा सा, वो नहीं जानता था, बोलते ये तो कागज का टुकड़ा है। बोले नहीं, ये कागज का टुकड़ा नहीं, तुम नहीं जानते क्या है, ये 1 करोड़ का चेक है। तो है उसके नाम से इतना 1 करोड़ का चेक है, परंतु कोई व्यक्ति उसको पढ़कर दिखाने वाला चाहिए, अनुभूत करवाकर दिखाना चाहिए। कृपा तो है परंतु कृपा का अनुभव नहीं होता है, इसलिए यह प्रसन्नता और मन का श्री कृष्ण में आविष्ट होना यह कठिन अनुभव होता है। तो इसीलिए ये विभिन्न अंग जो अष्टांग योग के है, या इसे ही भक्ति के रूप में हम बतला रहे थे, मौनम सद आसन जय, आसन को जय प्राप्त करना, मतलब आसन जीतना, जीतासन, फिर स्थैर्यम प्राण जय शनि। तो कल ये इसका पूर्व श्लोक और दोनों श्लोक, 5 श्लोक में लगभग प्राणायाम से प्रारंभ करके मूल प्रक्रिया, प्रथम जो 4-5 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक के जो अंग है, प्रमुख रूप से उनमें वायु को संयमित करने को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो मैं काफी विचार कर रहा था, कल संध्या में भी हम हमारे कई भक्त मिलकर कुछ ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, अभी सुजोक थेरेपी, कई प्रकार की कलर थेरेपी रहती है, फिर उसमें कपिंग थेरेपी, कई प्रकार की थेरेपी करते हैं, फिर मुद्रा थेरेपी होती है, वो हमारे राम अवतार को सिखाया उन्होंने, ऐसे मुद्रा करनी चाहिए। जो प्रभु जी कभी ध्यान करते नहीं दिखते थे, पहली बार मैं देखा उनको ध्यानस्थ हो गए थे। अलग अलग मुद्रा है कि अलग पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें कल बात करते करते एक बात को कह दिए थे, वो कह रहे थे कि आप मुद्रा लो और विशुद्ध से अपने श्वास पर ध्यान दो, श्वास की गति पर, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो यह प्रयोजन क्या है विशुद्ध से प्राणायाम आदि का भी सार रूप में कहा जाए तो हम प्रयोजन पर अधिक रुचि होनी चाहिए हमारी। हालांकि कई जब आप साध्य आपका स्पष्ट न हो, आपका यह अगर निश्चित नहीं है कि आपको नागपुर जाना ही है, तो यात्रा में क्या दोष आ जाएगा, आप बीच में कहीं अटक सकते हैं। पक्का मन नहीं है आपका कि नागपुर जाना ही है, शायद तलेगांव में चले जाएंगे, फिर आरवी चले जाएंगे, फिर कौंडिन्यपुर जा सकते, कहीं और भी आप भटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि साध्य स्पष्ट नहीं है। तो वैसे ही कई बार हम अलग अलग चर्चा करते, प्रभु जी चक्र मतलब क्या है, षटचक्र क्या, षटचक्र की भी विस्तृत व्याख्या वर्णित की जा सकती है कुंडलिनी योग के द्वारा, परंतु प्रमुख है कि उसका प्रयोजन है क्या षट चक्र का। हमारा पुण्य बढ़ रहा है कि पुण्य कम हो रहा है, हमारा पाप बढ़ रहा है कि पाप कम हो रहा है, इस बात की भी चर्चा की जा सकती है। परंतु महत्व क्या है, पुण्य पाप यह नहीं है, पुण्य वर्धित हो या पाप कम हो यह अधिक आवश्यक नहीं। आवश्यक यह है कि आपका मन श्री कृष्ण में कितना लग रहा है। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण का स्मरण, श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण कितने प्रमाण में हमारा वर्धित हो रहा है, यह अधिक आवश्यक है। तो इन वायुओं को जब संयमित शुभ से क्या 5 वायु होती है ना शरीर में, आयुर्वेद आदि में जो बतलाया जाता है, तो जिस जैसे हम कुछ डॉक्टर से सुने हैं आयुर्वेद के जो वैद्य आदि कहते हैं कि विशेष रूप से जो शरीर धारण करता है व्यक्ति, जब जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वह कितने श्वास लेता है और कितने अन्न के कण ग्रहण करता है, ये निश्चित होता है। कल कहते कहते कह दिया, वो हमारे रामतर भी बैठे थे, उनसे पूछा गया कि दिन में काम बहुत करना है हमको, नींद नहीं आनी चाहिए, क्या किया जाए? तो डॉक्टर ने कह दिया, जितना कम अन्न उतनी कम निद्रा, जितना ज्यादा अन्न रहेगा उतनी ज्यादा निद्रा रहती है। फिर उसमें काफी अलग अलग अपने हिसाब से बता रहे थे कि शरीर में क्या एसिड और अल्कलाइन दो होते हैं ना, तो कहा गया कि अल्कलाइन का प्रमाण ज्यादा रहता है, कुछ ऐसा है शायद कि डॉक्टर जानते होंगे कितना, कहते 80% अल्कलाइन राइट शायद, और 20% एसिड ऐसा है। और अन्न जितना भी होता है, गेहूं चावल दाल आदि, वो कहते हैं इसमें एसिड का प्रमाण ज्यादा है, और अन्य जो शाक होते हैं, सलाद होता है, सब्जियां होती है, फल होते हैं, इनमें अल्कलाइन अधिक होता है, उसको क्या कहेंगे हिंदी में? क्या अम्ल क्या मतलब? एसिड अम्ल मतलब यानी अल्कलाइन कहते शब्द हैं, ठीक है आप जानते हो एसिड का जो विपरीत अल्कलाइन होता है। तो उसमें कहते हैं कि स्वाभाविक शरीर में अल्कलाइन अधिक है तो अल्कलाइन का प्रमाण ही ज्यादा होना चाहिए, तो भोजन के अंदर लगभग 70-80% तो बोले कि सलाद सब्जियां अलग अलग विभिन्न प्रकार के रस है उनका प्रमाण होना चाहिए, परंतु त्रुटि क्या होती है कि अन्न बहुत ज्यादा दबा दबा खाते, इतना चावल लो, इतने अधिक रोटी लो। और देखा गया है कल जैसे वो हम चर्चा उपवास के विषय में कर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि आप देखें अन्न जब कम होता है आपकी निद्रा भी कम होती है, कभी कभी अनुभव भी किया गया है, कई के भक्त कभी अधिक मास का व्रत करते, कार्तिक मास आदि व्रत करते, कुछ व्रत लेकर संकल्प लेकर जब अन्न को प्रमाण कम करते हैं उसको संयमित रखते हैं तो सहज आप देखें निद्रा आदि कम होती है। तो अन्न का जो आप कितना अन्न ग्रहण करते हैं उसके अनुसार आपकी आयु, तो पूर्व काल में जितने योगी जन थे तप के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपनी आयु को बढ़ाते थे कहा जाता है। तो प्रश्न है कि उस समय के शरीर में, इस समय में शरीर में अंतर क्या था? तो प्रमुख रूप से वहां पर ये कहा कि अन्न और वायु इन दो को वो रोक देते थे बहुत अधिक काल तक, तो बहुत अधिक काल तक रोकने के कारण उनकी आयु सहज वर्धित होती थी। बहुत ज्यादा अन्न आप अगर ले तो उसका परिणाम ये होगा कि आपकी आयु क्रमशः कम होने लगती है। क्यों? बहुत ज्यादा अन्न लेते हैं, एक मतलब एक डॉक्टर मुझे बताए थे ज्यादा अन्न लेंगे तो निश्चित रूप से आप सोएंगे, ये पक्का है। अन्न ज्यादा जब होता है तो उसका परिणाम होता है कि निद्रा अधिक होती है, और जब शरीर निद्रा होती है तो कहते हैं कि उसकी जितनी ऊर्जा है वो डिस्चार्ज होने लगती है, शरीर को आवश्यक जितना एक निद्रा है रात्रि के समय की, उतनी निद्रा देने पर शरीर की जो शक्ति ऊर्जा है वो वर्धित होती है, परंतु उसके अलावा जितना भी आप नींद लेते हैं केवल एक भ्रम मात्र होता है कि हमको आराम मिल रहा है। आप देखा जाए वो शरीर अधिक जो क्या कहते हैं भारीपन आ जाता है शरीर में, मतलब वो उसमें की जो ऊर्जा है जो एनर्जेटिक होना चाहिए वो शरीर ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि वो दिन की जो निद्रा होती है जब सूर्य उदित होता है, सूर्य उदित होने के बाद जो जितनी निद्रा होती है कहते हैं कि सूर्य समस्त ऊर्जा को खींच लेता है उसकी जितनी निद्रा होती है। और कारण क्या है तो अन्न वहां पर कहा गया, हाँ अन्न से निद्रा होती है, और निद्रा से क्रमशः फिर आयु कम, जितना दिन में जो सोता है तो कहा जाता है कि दिन में सोने से आयु कम होने लगती है। तो ये एक कारण तो ये हुआ कि अन्न और वायु, मैं अभी जो स्मरण कर रहा था तो कहना कुछ और ठीक है चलने से, अन्न और वायु का जो प्रमाण है के अनुसार उसकी आयु निश्चित होती है, और अन्न और वायु के प्रमाण के अनुसार उसके मन की स्थिरता और मन की एकाग्रता भी प्रभावित होती है। बहुत अधिक जब अन्न हो तो वो मन, क्योंकि शरीर में जब जिसको रूप गोस्वामी कहे वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो वहां पर भी जिह्वा उदर यह दो संयम न रहे तो इसका प्रभाव तुरंत मन पर भी होता है। बहुत अधिक जब भोजन हो, प्रचुर मात्रा में भोजन हो तो वो मन को फिर, क्योंकि फिर स्वाभाविक तमोगुण का प्रभाव रहता है निद्रा आदि का, तो मन को एकाग्र होने नहीं देता है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पर मन की बात हुई तो मैं जरा देख रहा था, ये प्रसिद्ध शिला प्रभुपाद का ही तात्पर्य है श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय का अंतिम श्लोक का तात्पर्य। संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्ट गंगायां परितं परम ऋषि भी। नहीं नहीं इसके बाद अंतिम जो है ये वाला, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रश्री भूरि तेजस अहम चाधिकम तत्र निविष्ट तत् अनुग्रहात् स अहम व श्रा वैश्याम यथाधीतम यथामति कि सुखदेव गोस्वामी ने तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रश्य भूरि तेजस कि सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर भागवत को सुनाया अहम च अद्यगमम तत्र और मैंने उसे वहां पर सुना और समझा अध्यगम तो अच्छी तरह से उसको ग्रहण किया मैंने सुद गोस्वामी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित मालिक सुनाए तो मैं उसको ग्रहण किया तत्र निविष्टस तत् अनुग्रह दो बात वहां पर बतलाई कैसे ग्रहण किया तो उसमें दो विशेष गुण बताए तत्र निविष्टस तत् अनुग्रह तो पहला चीज है कि निविष्टस मतलब पूरा एकाग्र चित्त हो गया था मैं मतलब अन्य समस्त बाह्य कार्यों को ऐसा नहीं कि वहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे हैं सुद गोस्वामी सामने मोबाइल लेकर व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। निवृत्ति सर्वे इंद्रिय वृत्ति विभ्रमा इस विष्णु पितामह के विषय में कहा गया कि समस्त इंद्रियों की वृत्ति से जब निवृत्त हो जाते हैं अब पूरा एकाग्र हो गए निविष्ट पहला शब्द है दूसरा तत् अनुग्रहात उन सुखदेव गोस्वामी का अनुग्रह मुझ पर था। एक बहुत सुंदर है कि आप जो भी कथा है कथा को धारण कर पाते हैं पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ जब श्रवण करते हैं साधु वैष्णव से उनकी कृपा हो तब वह ग्रहण हो पाता है। हालांकि कई बार हम YouTube पर आजकल या इंटरनेट पर भी कथाओं का श्रवण किया जाता है तो कहते दो प्रकार का श्रवण होता है एक होता है बुद्धि की धरातल पर श्रवण किया जाता है बौद्धिक स्तर पर और दूसरा कृपा के स्तर पर। जब साधु के चरणों में बैठकर कथा का श्रवण किया जाता है तो उसमें कृपा प्रवाहित होती है जब मोबाइल आदि में श्रवण किया जाता है तो बौद्धिक स्तर पर वो कृपा उतनी प्रवाहित नहीं होती है एक अलग प्रभाव होता है। आप जब साधु सुनते हैं तो भक्तों की संगति में हम बैठते हैं और जो कथा श्रवण करेंगे एक अलग उसका प्रभाव होता है परंतु अन्य समय पर आप जो श्रवण करेंगे उसमें वह अभाव वो पूरा प्रभाव नहीं आता है इस तरह से वर्णित किया गया। तो वही यहाँ पर सुद गोस्वामी कह रहे कि मैंने जो सुना एकाग्र चित्त होकर उनकी कृपा से अध्यगम मैं समझ लिया सह अहम व श्रावयिष्यामि अब मैं आप सबको सुनाता हूं यथाधीतम यथामति जैसा मैंने सीखा जैसा मैंने समझा जैसा मैंने आत्मसात किया वैसा मैं बतलाता हूं। तो इसका तात्पर्य केवल मैं पढ़ूंगा यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे यह वाक्य को श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में दो तीन बार उल्लेख किए ध्यान से ये लाइन सुने यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। केवल अलंकारिक भाषा नहीं है जो हम कहते हैं नाम है सालंकार वो सालंकार शब्द है सालंवार नहीं है वो व्याकरण में वैसे दिया डर रहता है हमारे भक्त जो प्रातःकाल शिक्षाष्टक पढ़ते हैं नाम है धन नाम है सुंदर स्त्री या सालंवार सालंकार है अलंकारमयी। तो श्रील प्रभुपाद जब शब्द का प्रयोग किए श्रील प्रभुपाद के शब्द केवल अलंकारमयी भाषा ही नहीं है या काव्यात्मक रूप से कि प्रत्यक्ष प्रत्येक पन्ने पर भागवत के आप श्री कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं एक भक्त बताया जब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भागवत के पृष्ठों में आप श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं मतलब श्रील प्रभुपाद ने अनुभव किया प्रभुपाद लिखते हुए प्रभुपाद अनुभव किए उस बात को कि भागवत के कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाशय प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ कहे प्रत्येक श्लोक भागवत का प्रत्येक अक्षर श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप कहा गया। तो उसी विश्लेषण रूपा यहां पर लिखे कि श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी एक व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीखेगा तो जिसका जीवन का उद्देश्य कथावाचन से कुछ धन कमाकर विषय भोग में लगाना है तो वैसा संभव नहीं है। कल भी हम जब वहां डॉक्टर से बात कर रहे थे बहुत सुंदर उन्होंने बात कही हालांकि उन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में कहा हम जिसको वैदिक संस्कृति में सुनते हैं वैदिक संस्कृति में कहा जाता है वैद्य ब्राह्मण है ना और ज्योतिष तीन बात ले ये तीन चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए कहते हैं। जो वैद्य होता है, जो उपचार करता है, ब्राह्मण जो आध्यात्मिक ज्ञान यजन याजन करवाता है, और ज्योतिष जो ज्योतिष विद्या बतलाता है। ये तीन में यदि धन की वृत्ति हो जाए तो ये तीनों कार्य फल नहीं देते हैं। वो डॉक्टर से हम कह पूछ रहे थे, मैंने कहा कि प्रभु जी आप एक नागपुर में भी अपना ब्रांच खोलिए। बोले यहाँ का ही संभल नहीं रहा है। और अच्छे अनुभव बतला रहे थे, संभावना है वो यहाँ पर आश्रम मंदिर में भी वो भक्तों के लिए दो तीन दिन का कैंप लेने का कह रहे हैं, तो हम आमंत्रित करेंगे। तो उन्होंने कहते कहते एक बात कहा कि विशेष हमारे इसमें तुरंत रिजल्ट क्यों दिख रहा है इतना अच्छा। वहां पर डॉक्टर एक बाहर का जो डॉक्टर था दूसरा, वो अपने पेशेंट को लेकर आया था कि मुझसे ये ठीक नहीं हो रहा है, आप इसको ठीक करवाइए आपके थेरेपी के द्वारा, वो कह रहे थे। तो उसने एक बात कही कि रिजल्ट तब मिलता है जब आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का भाव शुद्ध अगर आपका है, पैसे कमाने का मन में मत रखना। बोल रहे हैं उनको देते हैं, मतलब वो नॉमिनल जो चार्ज रखा है वो लेते हैं, परंतु बहुत ज्यादा हमको प्रॉफिट करना है, एकदम बिजनेस एक्सपांड करना है, ये हम विचार नहीं कर रहे। चाहे तो हम भी ऐसे कुछ ब्रांच खोल सकते हैं, वो छोटा सा मतलब इतना छोटा कमरा रखा है आपने, कुछ बड़ा क्लिनिक बनाओ, बड़ा एडवर्टाइजमेंट करो। तो बोले कि प्रॉफिट कमाना ये अगर मन में आ गया तो इलाज जो है असर नहीं करेगा। ये तो साधारण उपचार के लिए, एक शरीर का उपचार भी कार्य नहीं करता है आजकल के डॉक्टर के लिए क्या कहा जाए अभी, तो वो तो इस बात को शायद समझ भी नहीं पाएंगे जो जिन्होंने डॉक्टरी को एक धंधा बना लिया है। और वो कहते हैं ना कि डॉक्टर मतलब सबसे ज्यादा अगर बिजनेस करना है तो मैक्सिमम अर्निंग का जो प्रोफेशन आजकल बोलते हैं लेक्चररशिप और मेडिकल डॉक्टरी, पैसा बहुत ज्यादा आता है बोलते, जबकि ये दोनों निःशुल्क होना चाहिए भाव। तो क्यों, तो इसी बात को यहां पर भी कहा गया है कि कथावाचक जो है धन कमाने के मन से रहे तो फिर वो भागवत जो है फलीभूत नहीं होती है। मतलब भागवत का फल है कि प्रत्येक अक्षर में आप कृष्ण का अनुभव कर सके, जो यहां पर शब्द है वैकुंठ लीलाभि ध्यानम, परंतु अनुभव नहीं होगा यदि उसमें मनोवृत्ति में आपके परिवर्तन हो। मनोवृत्ति में जितनी पवित्रता हो उतना वह कथा श्री कृष्ण को आविर्भूत करती है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्य का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता। भागवत को समझने का यही रहस्य है। नहीं ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता है। तो प्रभुपाद दो बात बतलाए, एक तो धन प्रयोजन धन उपार्जन यह प्रयोजन न हो, और दूसरी अपनी विद्वत्ता दिखलाना भी प्रयोजन न हो कि मैं ऐसा कुछ प्रभाव करूंगा, ऐसा कुछ बोलूंगा दुनिया भर का ऐसा, क्योंकि अंततः नायम आत्मा प्रवचन लभ्या न मेधया न बहुनाश्रते न। बहुत अधिक प्रवचन देने से, बहुत अधिक आप मोबाइल में प्रवचन सुनने से श्री कृष्ण प्राप्त होंगे यह आवश्यक नहीं, श्रुति मंत्र है ना। न आत्मा प्रवचने न लभ्य, कि मैं बहुत प्रवचन दू तो श्री कृष्ण के अनुभव ये आवश्यक नहीं। मैं बहुत अधिक प्रवचन सुन लू बहुना श्रुते न, बहुना श्रुते न शब्द का अर्थ यही हुआ कि बहुत ज्यादा सुनने से कृष्ण नहीं आते, परंतु इन समस्त साधनों से जब हमारे हृदय में दीनता आती है, श्री कृष्ण के प्रति गुरु के प्रति समर्पण आता है, तो श्री कृष्ण स्वयं को प्रकाशित करते हैं हमारे समक्ष। तो आगे यहां पर बतलाया गया है, यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, करना चाहते हैं क्या, तो आगे का तात्पर्य आप ध्यान से सुनेंगे। यदि करना चाहते हैं, कुछ लोग अगर नहीं जाते प्रभु इतना तो भी जल्दी नहीं है, इतना क्या कृष्ण का दर्शन करना है, अभी तो संसार ही देखना है। वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक वाक्य पढ़ रहा था, भगवान दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि संसार को देखना हम छोड़ नहीं रहे इसलिए भगवान दिख नहीं रहे। संसार को देखने का आप जैसे ही जो अभ्यास है उसे आप जैसे छोड़ देते हैं तो तत्क्षण आपको श्री कृष्ण दिखाई देंगे। तो अभी संसार को देखने की कामना बहुत अधिक है हमारी, तो संसार की देखने की कामना होती तो यदि कोई भागवत के पृष्ठ में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहे तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तो इसका कोई और विकल्प नहीं है। ये तो ठीक है, मैं आगे का पढ़ना था। सुध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक प्रतिनिधि है, क्योंकि उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया है जिस रूप से उन्होंने अपने महान पिता सुना था। तो सुध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी सुने, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव सुने, उसी तरह सुध गोस्वामी ने भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे जैसा सुखदेव गोस्वामी सुना है। अब आगे का चीज, केवल सुनना ही काफी नहीं है, मनुष्य चाहिए ध्यान पूर्वक मूल तत्व का आत्मसात करे। श्री प्रभुपाद एक एक वाक्य, एक्चुअली एक एक वाक्य पर एक एक प्रवचन चाहिए। प्रभुपाद के तात्पर्य इस तरह के, केवल सुनना ही काफी नहीं है, मनुष्य को चाहिए ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। सुनना नहीं, उसको एकदम एकाग्रचित्त होकर एक एक शब्द को, जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कहते एक एक प्रवचन मतलब 1000 डायमंड के हीरे में, डायमंड डायमंड बोलते हैं, डायमंड हीरे ना, 1000 हीरे आपको प्राप्त होते हैं। जैसे मधुमक्खी का दृष्टांत दिया जाता है, मधुमक्खी जो है शहद को बनाती है और वो शहद हम चाटते हैं, हमारे भक्त अभिषेक में हम रुक्मिणी द्वारका के शहद प्रयोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न, मुझे एक चम्मच जो शहद है कैसे प्राप्त होती है, तो वहां वर्णन किया गया कि एक जो मधुमक्खी होती है वो एक मधुमक्खी लगभग 1000 पुष्पों पर बैठती है, लगभग 1000 पुष्पों पर बैठकर वो एक एक ऐसे बूंद उठाती है वहां से, क्या कहते हैं पराग, पराग होता है ना उसमें, पराग निकलती है एक एक बूंद और उसको इकट्ठा करते रहती है। तो कहते एक के पराग को जब चयन किया जाता है तो एक चम्मच शहद तैयार होता है। तो जब जो भक्त भगवान की सेवा करके साधना करके गुरु साधु आशीर्वाद से वो श्रवण किया है और वो सब एकाग्र, जिसको सुध गोस्वामी के लिए क्या कहा गया, पहला पहला जो श्लोक, तो अखिल पुराणानि से इतिहास आख्यादिन विदितानि धर्मशास्त्राणि यानि वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य च मुने सुत परावर विदो विदु। शौनकादि ऋषि सुध गोस्वामी से क्या कहते, आपसे हम क्यों सुनना चाहते, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चा अनघ। हे निष्पाप हे सुध गोस्वामी, आपने शास्त्रों को पढ़ा है सुना है, आख्यातिनि अप अधितानि धर्मशास्त्राणि, यानी तो आपने सुना है समझा और उसको समझाने का प्रयास भी किया कई बार। तो कहते कि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, आप जो सुनते हैं उसको जो अन्य को कहते हैं तो ज्ञान और अधिक आपका गहरा हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। तो सुध गोस्वामी ने पहले क्या किया, पढ़ा है, पढ़कर सुना समझा उसको समझाने का प्रयास किया, और फिर यानी वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण, बादरायण अर्थात सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के मुख से आपने कथा का श्रवण किया। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि बस मैं केवल एक ही भक्त से सुनूंगा बाकी सुनूंगा ही नहीं, कुछ ऐसे होते हैं। तो वहां पे क्या गया कि आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना और साथ में अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदु, और अन्य कई संत महात्माओं के मुख से भी आप श्रवण करते गए। तो सूत गोस्वामी ने बहुत अधिक कथा को कई अलग अलग संतों के साक्षात्कारी भक्तों के मुख से श्रवण किया था। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के श्लोक के तात्पर्य में कि यह विधि होती है कि आप शास्त्र को श्रवण भी करते अध्ययन करते हैं और कई आचार्य कई साधु संतों के मुख से उसको सुनना चाहिए, तब तो वह जो ज्ञान इस तरह से ग्रहण किया जाता है इसको निविष्ट कहा गया है। तो यहां पे लिख रहे कि सुनना ही काफी नहीं है, मनुष्य है कि ध्यानपूर्वक मूल तत्व आत्मसात करे। निविष्ट शब्द बताता है कि सुध गोस्वामी ने भागवत के रस को अपना कान से पिया है। निविष्ट शब्द क्या, ये भी अलग अलग शब्द है। तो लगभग समय हो गया, अभी हुआ ही नहीं विषय। तो भागवत को ग्रहण करने की विधि आगे बतलाई कैसे एकाग्र चित्त कैसे हुआ जाता है, तो अब इसको कल ले लेता हूं, सामग्री हुआ ही नहीं। मन कैसे एकाग्र हो भागवत श्रवण के लिए, वह अंतिम 5 पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, तो इसको मैं कल ही कहूंगा क्योंकि इसको समझाना आवश्यक है। वाक्य केवल पढ़कर कह देना उतना पर्याप्त नहीं है, कल पूरा कर लेता हूं पूरा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। किसी कोई टिका टिप्पणी जितना हम सुने उस संबंध